क्या होगा अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे पुराने विवादों में से एक, मेरा मतलब है विज्ञान बनाम धर्म या विकासवाद बनाम सृष्टिवाद का जो विवाद है, वो सिर्फ एक छोटे से,
अच्छा,
सिर्फ 3 अक्षरों वाले प्राचीन शब्द की गलतफहमी पर टिका हो सकता है।
ये सुनने में थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन जब हम प्राचीन भाषाओं और हजारों साल पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करते हैं ना, तो कभी कभी पूरी की पूरी दुनिया का नजरिया
सिर्फ एक शब्द पर टिक जाता है।
एकदम सही, सिर्फ एक शब्द की व्याख्या पर निर्भर करता है।
ठीक है, आइए इसे समझते हैं। आज हम अपने इस गहन विश्लेषण में ठीक इसी तरह की एक ऐतिहासिक और भाषाई उलझन को सुलझाने जा रहे हैं।
हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है।
बिल्कुल है। तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो रॉबर्ट वेनॉय के ओल्ड टेस्टमेंट इतिहास के 6 लेक्चर पर आधारित है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हमारा पूरा फोकस जेनेसिस अध्याय 1 में इस्तेमाल किए गए हिब्रू शब्द योम पर है।
योम, जिसका सीधा और साधारण अनुवाद होता है दिन।
हाँ, दिन। लेकिन ये साधारण सा दिन इतना विवादित क्यों है?
क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है।
सही बात है। हमारा लक्ष्य आज ये खोजना है कि कैसे एक ही प्राचीन शब्द के दर्जनों अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं।
बिल्कुल, और कैसे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आस्था के बीच पुल बनाने के लिए इस एक शब्द को अलग अलग चश्मों से देखा गया है।
यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह कोई व्याकरण की सामान्य कक्षा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये बहस सीधे तौर पर इस बात को तय करती है कि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कैसे देखते हैं।
मतलब क्या ये सब कुछ सचमुच एक सप्ताह के भीतर बना था?
हाँ, या फिर हम अरबों सालों के भूवैज्ञानिक समय की बात कर रहे हैं?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
वेनॉय का ये लेक्चर हमें उसी प्रक्रिया के अंदर ले जाता है जहाँ विद्वान ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि
प्राचीन पाठ वास्तव में क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
हाँ, वो भी बिना अपनी आधुनिक सोच उस पर थोपे।
तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे बुनियादी और सबसे स्पष्ट सवाल से शुरुआत करते हैं।
ठीक है,
जब जेनेसिस में कहा गया है कि सृष्टि का निर्माण 6 दिनों में हुआ, तो क्या उस दिन का मतलब ठीक वही है जो आज हमारी घड़ियों में होता है?
मतलब पूरे 24 घंटे का एक सौर दिन।
हाँ, क्योंकि अमूमन जब हम दिन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है
और यहीं से जटिलता शुरू होती है। देखिए, जो लोग इसे 24 घंटे का दिन मानते हैं उनका तर्क है कि पाठ को उसके सबसे सीधे और शाब्दिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए।
जो लिखा है बस वही मान लो।
बिल्कुल, लेकिन वेनॉय अपने विश्लेषण में ये तर्क देते हैं कि इसे 24 घंटे का दिन मानना तार्किक रूप से बहुत मुश्किल है।
अच्छा, उन्होंने क्या सबूत दिए हैं इसके लिए?
उन्होंने पाठ के भीतर से ही कुछ बहुत ही मजबूत सबूत पेश किए हैं। उनका पहला बिंदु ये है कि अगर आप निर्माण के क्रम को देखें तो सूर्य, चंद्रमा और तारे यानी वे खगोलीय पिंड जो हमारे लिए समय को मापते हैं,
जिनसे 24 घंटे का दिन और रात तय होता है।
बिल्कुल, वे तो 4थे दिन तक बनाए ही नहीं गए थे।
रुकिए, ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या हो गई
है ना।
अगर आसमान में सूरज ही नहीं है तो फिर 24 घंटे का सौर दिन कैसे गिना जा सकता है? पहले 3 दिनों में समय का पैमाना क्या था?
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसी वजह से वेनॉय कहते हैं कि पहले 3 दिनों के अंत में जो वाक्यांश आता है।
कौन सा वाक्यांश?
शाम हुई और सुबह हुई।
ओ हाँ,
वेनॉय का मानना है कि ये शायद किसी शाब्दिक 24 घंटे के चक्र को नहीं दर्शा रहा है।
तो फिर ये क्या है?
ये एक प्रतीकात्मक वाक्यांश हो सकता है। मतलब ये बस ये बताने का एक काव्यात्मक तरीका है कि एक विशेष रचनात्मक अवधि समाप्त हो गई है और नई शुरू हो रही है।
यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है क्योंकि वेनॉय सिर्फ सूर्य की अनुपस्थिति पर ही नहीं रुकते।
हाँ, और भी बहुत कुछ है।
जब मैं स्रोत सामग्री पढ़ रहा था तो 6 दिन की घटनाओं का जो विवरण उन्होंने दिया है
वो सच में हैरान करने वाला है।
बिल्कुल, वो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचता है। अगर हम मान लें कि वो एक 24 घंटे का दिन था तो उस दिन के उजाले वाले हिस्से में यानी लगभग 12 घंटों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो असंभव सा लगता है।
आप 6 दिन की उस लंबी सूची की बात कर रहे हैं ना?
हाँ हाँ, पाठ के अनुसार उसी 1 दिन में ईश्वर ने सारे जमीनी जानवरों का निर्माण किया, फिर आदम को बनाया, उसे अदन के बगीचे में रखा
और उसे उस बगीचे की देखभाल का काम भी समझाया।
सही कहा। इसके बाद ईश्वर आदम के सामने एक एक करके सारे जानवर और पक्षियों को लाते हैं
और आदम उन सब पर नजर डालता है, उनका अध्ययन करता है
और उनका नामकरण करता है।
और देखिए, ये नामकरण कोई छोटा काम तो रहा नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं, दुनिया के सारे जानवर।
पाठ ये भी संकेत देता है कि इस प्रक्रिया के दौरान आदम को ये गहराई से एहसास होता है कि इन सभी जानवरों के जोड़े हैं
लेकिन उसका कोई साथी नहीं है।
हाँ, वो अकेला है और ये अकेलापन महसूस करने के लिए भी एक मनोवैज्ञानिक समय चाहिए होता है।
एकदम सही। ये तो ऐसा हो गया जैसे मैं कहूँ कि मैंने आज सुबह उठकर अपना पूरा घर पैक कर लिया, एक नए शहर में शिफ्ट हो गया, नया घर सजा लिया, मोहल्ले के सारे लोगों से मिलकर उनके नाम याद कर लिए,
बाप रे,
और शाम होने से पहले ये भी महसूस कर लिया कि मैं इस नए शहर में बहुत अकेला हूँ।
हाँ, ये सब 12 घंटे में कैसे हो सकता है?
और इसके बाद का हिस्सा तो और भी हैरान करने वाला है। आदम के अकेलापन महसूस करने के बाद ईश्वर उसे गहरी नींद में सुलाते हैं
और उसके पसली से स्त्री यानी हव्वा का निर्माण करते हैं।
और जब आदम उठकर हव्वा को देखता है तो वो हिब्रू में कहता है खब आम।
हाँ, जिसका अनुवाद उत्पत्ति 2:23 में किया गया है, आखिरकार या अब जाकर।
हाँ,
कोई इंसान 12 घंटे के भीतर आखिरकार कैसे कह सकता है?
ये प्रतिक्रिया तो एक लंबे इंतजार की ओर इशारा करती है।
बिल्कुल, ये विश्लेषण बिल्कुल उसी दिशा में है जो वैनोई समझाना चाहते हैं। आदम की वो राहत, वो आखिरकार कहना,
ये साबित करता है कि ये कोई सामान्य 24 घंटे का दिन नहीं था।
और इसके अलावा सातवें दिन का उदाहरण इस तर्क को और भी मजबूत करता है।
हाँ, सातवां दिन। पाठ कहता है कि ईश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया,
लेकिन ये विश्राम केवल 24 घंटे का तो नहीं था।
धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से ईश्वर का वो विश्राम आज भी जारी है।
तो अगर सातवां दिन एक बहुत लंबी निरंतर चलने वाली अवधि है,
तो हम ये क्यों मान लें कि पहले 6 दिन सिर्फ 24 घंटे के थे?
बिल्कुल तर्कसंगत बात है। लेकिन जो लोग 24 घंटे वाले सिद्धांत को मानते हैं, वे इतनी आसानी से हार नहीं मानते होंगे।
बिल्कुल नहीं मानते। अगर पाठ खुद इतने सारे संकेत दे रहा है कि दिन लंबे थे, तो फिर ये 24 घंटे वाली बहस आज तक जिंदा क्यों है? उनका सबसे बड़ा बचाव क्या है?
उनका सबसे बड़ा और मजबूत बचाव उत्पत्ति की किताब से नहीं आता।
अच्छा, तो कहाँ से आता है?
वो निर्गमन यानी एक्सोडस की किताब से आता है।
ओ,
आपको 10 आज्ञा याद होंगी?
हाँ हाँ, बिल्कुल।
निर्गमन 20:9-11 में कहा गया है कि इंसानों को 6 दिन काम करना चाहिए और 7वें दिन आराम करना चाहिए। और इसका कारण क्या दिया गया है? कारण यह है कि ईश्वर ने भी 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया।
ओ, तो 24 घंटे के सिद्धांतकारों का तर्क यह है कि अगर इंसानों का काम करने का हफ्ता शाब्दिक रूप से 7 24 घंटे वाले दिनों का है,
तो ईश्वर के काम का हफ्ता भी वैसा ही होना चाहिए, वरना ये तुलना काम ही नहीं करेगी।
तो क्या वैनोय के पास इस तर्क का कोई जवाब है? ये तुलना तो काफी सीधी और मजबूत लग रही है।
वैनोय इसका जवाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद के साथ देते हैं।
वो क्या?
वे कहते हैं कि यह समानता समय की अवधि यानी ड्यूरेशन में नहीं है।
तो फिर किसमें है?
समानता क्रम यानी सीक्वेंस में है। ये 6+1 का पैटर्न है।
अच्छा, 6+1 का पैटर्न।
हाँ, काम और विश्राम का अनुपात महत्वपूर्ण है, ना कि ये बात कि भगवान की घड़ी और इंसान की घड़ी एक ही गति से चलती है।
ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। जिस तरह से ईश्वर का काम इंसान के काम से असीम रूप से बड़ा है,
उसी तरह ईश्वर का एक दिन भी इंसान के एक दिन से असीम रूप से बड़ा हो सकता है।
क्या बात है। अब जो विज्ञान के छात्र हमें सुन रहे हैं, वे शायद सोच रहे होंगे कि ये सब विज्ञान के साथ कहाँ फिट बैठता है।
भूविज्ञान और जीवाश्मों की बात कर रहे हैं आप?
अगर हम मान लें कि प्राचीन समय के लोग 24 घंटे के दिन पर ही अड़े रहे, तो जैसे जैसे भूविज्ञान का विकास हुआ
और हमें लाखों साल पुराने जीवाश्म मिलने लगे,
डायनासोर की हड्डियां और प्राचीन चट्टाने मिलने लगी, तो उन शाब्दिक व्याख्याकारों ने इस नई जानकारी को कैसे संभाला?
क्या उन्होंने विज्ञान को पूरी तरह से नकार दिया?
हाँ, यही सवाल है।
देखिए, कुछ ने तो विज्ञान को नकार दिया, लेकिन कई गंभीर धर्मशास्त्रियों ने विज्ञान और प्राचीन पाठ के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश की।
और यही से कुछ बहुत ही रचनात्मक सिद्धांतों का जन्म होता है ना?
बिल्कुल। जो लोग मानते थे कि जेनेसिस के दिन केवल 24 घंटे के ही थे, उन्हें उन लाखों सालों के जीवाश्मों के लिए एक जगह ढूंढनी थी।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने एक सिद्धांत निकाला जिसे गैप थ्योरी या रेस्टिट्यूशन थ्योरी कहते हैं।
गैप थ्योरी मतलब किसी चीज के बीच में कोई खाली जगह या अंतराल।
एकदम सही। आप उत्पत्ति 1:1 को देखिए। शुरुआत में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की।
हाँ, ये पहली लाइन है।
और फिर उत्पत्ति 1:2 कहता है, और पृथ्वी आकारहीन और शून्य हो गई। गैप थ्योरी का तर्क ये है कि इन दो वाक्यों के बीच लाखों या शायद करोड़ों वर्षों का एक अज्ञात अंतराल या गैप है।
ओह, तो वो जीवाश्म उसी गैप के हैं।
हाँ, उनका मानना है कि 1:1 में एक परिपूर्ण मूल सृष्टि थी जिसमें डायनासोर और वे सारे प्राचीन जीव मौजूद थे
जिनके जीवाश्म हमें आज मिलते हैं।
बिल्कुल। फिर कोई बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय प्रलय आई, शायद किसी बुराई के पतन के कारण, और पृथ्वी नष्ट होकर आकारहीन और शून्य हो गई।
ओह, तो वे कह रहे हैं कि जो 6 दिन जेनेसिस में बताए गए हैं वे असल में पहली बार दुनिया बनाने के दिन नहीं थे।
नहीं, वे एक नष्ट हो चुकी दुनिया को फिर से बसाने के,
यानी पुनर्निर्माण के 24 घंटे वाले 6 दिन थे।
हाँ, बिल्कुल यही उनका तर्क है।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक पुरानी इमारत को गिराकर उसी जमीन पर 6 दिन में नई इमारत खड़ी कर दी हो,
और पुरानी इमारत का मलबा यानी जीवाश्म जमीन के नीचे दबा रह गया हो।
आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी है। गैप थ्योरी यही करती है, वो विज्ञान के लाखों सालों को उस गैप में छुपा देती है
और साथ ही जेनेसिस के 24 घंटे के दिनों को भी बचा लेती है।
लेकिन ये थोड़ा असुविधाजनक नहीं लगता? मतलब पाठ में कहीं भी किसी प्राचीन प्रलय का सीधा जिक्र तो है नहीं।
हाँ, डायनासोर के युग में नष्ट होने का कोई सीधा जिक्र नहीं है।
ये तो बस विज्ञान के दबाव में आकर एक रास्ता निकालने जैसी बात हो गई। क्या कोई और तरीका भी निकाला गया?
हाँ, क्योंकि गैप थ्योरी की भाषाई बुनियाद थोड़ी कमजोर मानी गई, इसलिए डॉक्टर न्यूमन और आरजे स्नो जैसे विद्वानों ने एक नया रास्ता तलाशा।
उन्होंने क्या कहा?
उनके सिद्धांत को इंटरपीरियड थ्योरी कहा जाता है।
अच्छा।
इन्होंने प्रलय या विनाश की कहानी का सहारा नहीं लिया। इसके बजाय उनका तर्क था कि निर्माण के दिन तो शाब्दिक रूप से 24 घंटे के ही थे,
लेकिन हर एक दिन के बीच लाखों वर्षों का एक लंबा कालखंड बीता।
बिल्कुल सही पकड़े।
रुकिए, मुझे इसे समझने दीजिए। मतलब ईश्वर ने पहले दिन 24 घंटे काम किया, प्रकाश बनाया, फिर उन्होंने अपनी घड़ी रोक दी और लाखों साल तक उस प्रकाश को ब्रह्मांड में फैलने और विकसित होने दिया।
हाँ, एक तरह से।
फिर लाखों साल बाद उन्होंने घड़ी दोबारा शुरू की, दूसरा 24 घंटे का दिन काम किया और फिर से एक लंबा ब्रेक ले लिया।
आप इसे एक विराम या पॉज की तरह समझ सकते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि रचनात्मक कार्य 24 घंटे के छोटे छोटे झटकों में हुआ
और विकास के लिए बीच में लाखों वर्षों के युग छोड़ दिए गए।
बिल्कुल।
ये तो और भी ज्यादा जटिल लग रहा है। अगर आपको लाखों साल चाहिए ही हैं, तो क्या ये कहना ज्यादा आसान नहीं है कि वो दिन अपने आप में ही लाखों साल का था?
घड़ी को बार बार रोकने और चालू करने की क्या जरूरत है ना?
हाँ, वही तो।
और आपकी इसी सोच को धर्मशास्त्र में डे एज थ्योरी कहा जाता है।
ओह, तो इसके लिए भी एक थ्योरी है?
हाँ, और विनोई खुद भी इसी की तरफ झुकाव रखते हैं। ये सिद्धांत किसी गैप या रुके हुए समय की तलाश नहीं करता।
तो ये सीधे तौर पर स्वीकार करता है कि हिब्रू शब्द योम में इतनी भाषाई लोच है कि वो 24 घंटे के बजाय एक युग को दर्शा सके।
बिल्कुल, एक युग, एक कल्प या एक अनिश्चित कालखंड। इसलिए 6 दिन वास्तव में भूवैज्ञानिक इतिहास के 6 बड़े युग हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है।
क्या?
चाहे वो गैप थ्योरी हो, इंटरपीरियड हो या डीएज थ्योरी, क्या ये सब विज्ञान के डर से नहीं किया जा रहा?
आपका मतलब है कि हम वैज्ञानिक दबाव में ऐसा कर रहे हैं?
हाँ, क्या हम केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे कार्बन डेटिंग और जीवाश्म विज्ञान के आधार पर अपने प्राचीन पाठों की नई व्याख्या नहीं कर रहे हैं?
कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं।
इसे तो गोल पोस्ट खिसकाना, मूविंग द गोल पोस्ट कहेंगे ना। क्या हम पाठ से वही अर्थ नहीं निकाल रहे जो आज के समाज में हमें सुविधाजनक लगता है?
अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो फ्रांसिस शेफर नाम के एक प्रसिद्ध विचारक का तर्क यहाँ बहुत काम आता है।
उन्होंने क्या कहा?
अपनी पुस्तक जेनेसिस इन स्पेस एंड टाइम में वे एक बहुत ही संतुलित नजरिया पेश करते हैं। शेफर कहते हैं कि हिब्रू शब्द योम अपने आप में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है।
मतलब भाषा विज्ञान के नजरिए से ही वो स्पष्ट नहीं है।
हाँ, ये 24 घंटे भी हो सकता है और एक लंबा युग भी। अब अगर पाठ खुद ही 2 अर्थ दे रहा है, तो विज्ञान की खोजों से शत्रुता रखने के बजाय हम उसे एक मार्गदर्शक के रूप में क्यों ना लें?
ओह, तो उनका मतलब है कि विज्ञान हमें पाठ को बदलने के लिए नहीं कह रहा,
बल्कि ये चुनने में मदद कर रहा है कि कौन सी मौजूद व्याख्या ज्यादा सही हो सकती है।
क्या बात है।
वेनॉय का मुख्य संदेश भी यही है। वे कहते हैं कि आपको विज्ञान को खुश करने के लिए बाइबल को मरोड़ना नहीं चाहिए।
लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक खोज अकाट्य है,
तो उसे एक प्रेरणा या स्टिम्युलस के रूप में काम करना चाहिए। वो हमें वापस जाकर प्राचीन पाठ को फिर से पढ़ने के लिए मजबूर करता है,
ताकि हम ये जांच सकें कि कहीं हमने अपनी ही कोई संकीर्ण या पुरानी सोच तो उस पाठ पर नहीं थोप दी थी।
एकदम सही। विज्ञान हमें उस सत्य को पहचानने में मदद कर सकता है जो शायद पाठ में हमेशा से था, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे।
तो इस सब का क्या मतलब है? अभी तक हमने जितनी भी बात की, चाहे वो 24 घंटे हों, गैप हों या युग हों, इन सब में एक बात समान है।
वो क्या?
वे सभी समय को नापने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, ये तो है।
लेकिन स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए मुझे एक पूरी तरह से अलग नजरिया मिला, जिसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया।
आप गैर वास्तविक दिन की बात कर रहे हैं ना?
हाँ, जिसे वैनॉय गैर वास्तविक दिन कहते हैं।
और यहीं से हमारी चर्चा भौतिक विज्ञान की दुनिया से निकलकर दर्शन की दुनिया में प्रवेश करती है।
बिल्कुल।
जब वैनॉय गैर वास्तविक दिन कहते हैं, तो उनका मतलब ये नहीं है कि ये दिन झूठे या काल्पनिक है।
तो फिर इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि जेनेसिस 1 में रचनात्मक गतिविधियों और ऐतिहासिक समय क्रम क्रोनोलॉजी के बीच कोई सीधा संबंध है ही नहीं।
मतलब इन धर्मशास्त्रियों के अनुसार लेखक हमें ये बता ही नहीं रहा है कि काम में कितना समय लगा।
बिल्कुल, वे समय नापने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।
तो क्या हो अगर ये समय के बारे में है ही नहीं? मतलब ये विशुद्ध रूप से वैचारिक, तार्किक या आध्यात्मिक प्रतीक है?
हाँ, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 3री शताब्दी के अलेक्जेंड्रिया के चर्च पिता ओरिजिन का उदाहरण लेते हैं।
अच्छा, ओरिजिन ने क्या कहा था?
उनका दृढ़ विश्वास था कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को दुनिया बनाने के लिए 6 दिन या 6 युगों की कोई जरूरत नहीं है।
ईश्वर के लिए तो सब पल भर का काम है।
ओरिजिन के अनुसार ईश्वर ने पूरी सृष्टि एक ही पल में तुरंत बना दी थी।
लेकिन अगर सब कुछ एक ही सेकंड में बन गया था, तो फिर पाठ में इन 6 दिनों का जिक्र क्यों है?
ओरिजिन का तर्क था कि मानव मस्तिष्क एक साथ पूरी सृष्टि को नहीं समझ सकता।
ओह, तो उसे सरल बनाने के लिए।
हाँ, इसलिए ये 6 दिन समय को नहीं बल्कि एक तार्किक क्रम को दर्शाते हैं, कार्य और कारण को दर्शाते हैं।
ये तो बहुत ही दिलचस्प है।
और ओरिजिन का ये भी कहना था कि बिना सूरज, चांद और तारों के पहले 3 दिनों को 24 घंटे मानना किसी भी समझदार इंसान के लिए वैसे भी तार्किक नहीं है।
तार्किक क्रम मतलब ये ऐसा है जैसे कोई मशीन कैसे काम करती है, इसके पुर्जे हम एक एक करके समझाते हैं।
जबकि मशीन असल में एक साथ काम कर रही होती है।
बिल्कुल।
और फिर महान विचारक ऑगस्टीन भी हैं। उनकी मशहूर किताब सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने जो नजरिया अपनाया है
वो तो पूरी तरह से रूपात्मक है।
हाँ, वो तो इसे किसी और ही स्तर पर ले जाते हैं। ऑगस्टीन का दृष्टिकोण वास्तव में बहुत गहरा और जटिल है। ऑगस्टीन के लिए जेनेसिस के ये दिन भौतिक दुनिया के सूरज उगने या डूबने से कोई ताल्लुक नहीं रखते।
तो उनके लिए दिन का क्या मतलब है?
उनके लिए एक दिन वास्तव में किसी प्राणी या फरिश्ते के आध्यात्मिक अनुभव और चेतना के जागने को दर्शाता है।
वाओ।
उदाहरण के लिए, जब कोई प्राणी अपने निर्माता को पहचानता है और उसकी स्तुति के लिए लौटता है, तो वो पहला दिन है।
और जब वो आकाश की प्रकृति को समझता है, तो वो दूसरा दिन है।
बिल्कुल।
ये तो बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक है। ये निर्माण की भौतिक कहानी को इंसान के भीतर की आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है।
हाँ, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है।
हाँ, मैंने पढ़ा कि ओलिवर बुजविल जैसे आधुनिक धर्मशास्त्री ऑगस्टीन के इस दृष्टिकोण को बहुत ही काल्पनिक, फैंसीफुल मानते हैं।
सही कहा।
और एक और सिद्धांत है डीजे वाइजमैन का, प्रकटीकरण का दिन, रेवलेशनल डे। ये तो सबसे अलग ही है।
हाँ, वाइजमैन की पुस्तक क्रिएशन रिवील्ड इन 6 डेज का तर्क है कि सृष्टि 6 दिनों में बनी ही नहीं थी।
तो फिर 6 दिन क्या है?
बल्कि भगवान ने मोसिस को 6 दिनों में इस सृष्टि के निर्माण के बारे में बताया था।
ओह, यानी ये दुनिया बनाने के दिन नहीं है, बल्कि ये वे 6 दिन हैं जिनमें ईश्वर ने इस कहानी का रहस्य उद्घाटन किया।
बिल्कुल, कहानी सुनाने के 6 दिन।
लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी समस्या नजर आती है।
कैसी समस्या?
अगर हम ऐतिहासिक क्रम को पूरी तरह से हटा दें, चाहे वो ओरिजिन का पल भर का निर्माण हो, ऑगस्टीन का आध्यात्मिक अनुभव हो या वाइजमैन का कहानी सुनाने का समय हो, तो क्या हम असल इतिहास को खो नहीं रहे हैं? अगर कोई ऐतिहासिक आधार ही नहीं है, तो क्या ये सिर्फ एक दर्शन बनकर नहीं रह जाता?
यह एक बहुत ही वैध चिंता है और कई विद्वान आपकी इस बात से सहमत होंगे।
विज्ञान से टकराव को टालने के चक्कर में हम शायद मूल कहानी की जड़ों को ही काट रहे हैं।
लेकिन इसी गैर वास्तविक दृष्टिकोण से एक सबसे आधुनिक और आज के समय में बहुत लोकप्रिय सिद्धांत निकल कर आता है।
कौन सा सिद्धांत?
जिसे ढांचागत परिकल्पना या फ्रेमवर्क हाइपोथेसिस कहा जाता है। एनएच रिडर बोस ने 1957 में इसे विस्तार से समझाया था।
ये वही दृष्टिकोण है जो विज्ञान और धर्म के टकराव को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, है ना?
बिल्कुल, क्योंकि रिडर बोस कहते हैं कि हम जेनेसिस को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं।
कैसे?
हम एक कविता को विज्ञान की प्रयोगशाला में तौलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार ये 6 दिन एक विशुद्ध साहित्यिक उपकरण है,
लिटरेरी डिवाइस।
हाँ,
तो इनका कोई भी कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल महत्व नहीं है?
बिल्कुल नहीं, लेखक हमें यह नहीं बता रहा कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, वो बस एक कलाकृति बना रहा है।
एक मिनट, ये मुझे किसी और चीज की याद दिला रहा है।
किसकी?
ये एक थीम वाले फोटो एल्बम की तरह है।
फोटो एल्बम? वो कैसे?
जैसे मान लीजिए हम एक लंबी छुट्टियों की ट्रिप से वापस आते हैं, जब हम उस ट्रिप का फोटो एल्बम बनाते हैं तो हम तस्वीरों को तारीख या समय के हिसाब से नहीं सजाते।
हाँ, हम उन्हें थीम के हिसाब से लगाते हैं।
बिल्कुल, एक पन्ने पर सारी खाने की तस्वीरें, दूसरे पन्ने पर पहाड़ों की तस्वीरें और तीसरे पर दोस्तों के साथ की तस्वीरें। तस्वीरें बिल्कुल सच्ची हैं, वे इतिहास हैं, लेकिन जिस क्रम में वे सजाई गई हैं वो ऐतिहासिक नहीं बल्कि विषयगत हैं।
ये एक बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है। राइडर बॉस ठीक यही तर्क दे रहे हैं।
अच्छा,
वे कहते हैं कि जेनेसिस 1 के लेखक ने सृष्टि की कहानी को एक समरूपता में सजाया है।
समरूपता मतलब अगर हम एल्बम के पन्नों की तरह पहले 3 दिन और दूसरे 3 दिनों को आमने सामने रखें,
हाँ,
तो आपको एक अद्भुत समानांतर पैरेललिज्म दिखाई देगा।
ये कैसे काम करता है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
ध्यान से सुनिए, पहले दिन ईश्वर ने क्या बनाया?
प्रकाश। प्रकाश। अब इसके समानांतर चौथे दिन को देखिए। चौथे दिन उन्होंने प्रकाश देने वाले स्रोत सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए।
मतलब पहले दिन एक खाली जगह या डोमेन बनाई और चौथे दिन उसे भरने वाले शासक बनाए।
बिल्कुल। अब दूसरे दिन पर आते हैं। दूसरे दिन ईश्वर ने आसमान और पानी का विभाजन किया,
और इसके ठीक समानांतर पांचवें दिन उन्होंने पानी में तैरने वाली मछलियां और आसमान में उड़ने वाले पक्षी बनाए।
एकदम सही। और फिर तीसरा दिन, तीसरे दिन सूखी जमीन और वनस्पति यानी पेड़ पौधे बनाए गए,
जिसके समानांतर छठे दिन उस जमीन पर रहने वाले जानवर और इंसान बनाए गए।
वाओ, ये संरचना तो वाकई बहुत सोची समझी लगती है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता।
और रीडर वोज यही नहीं रुकते, वे कहते हैं कि अगर आप पाठ को हिब्रू में पढ़ें तो इस अध्याय में कुल 8 बार रचनात्मक कार्य हुए हैं
जो और ईश्वर ने कहा वाक्यांश से शुरू होते हैं।
हाँ, दिलचस्प बात यह है कि दिन 3 और दिन 6 दोनों पर यह वाक्यांश 2-2 बार आता है, बाकी सब दिनों पर 1-1 बार। ये तो इस बात का अकाट्य प्रमाण लगता है कि लेखक ने जानबूझकर बहुत सोच समझकर इसे एक साहित्यिक ढांचे में पिरोया है।
हाँ, ऐसा ही लगता है।
ये सुनकर तो लगता है कि ये सबसे सही व्याख्या है। विज्ञान अपना काम कर सकता है, लाखों साल खोज सकता है, और बाइबल एक सुंदर कविता की तरह अपना आध्यात्मिक संदेश दे सकती है, कोई टकराव ही नहीं।
ये समाधान बहुत आकर्षक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ओलिवर बुसवेल जैसे आलोचक इसकी कड़ी आलोचना करते हैं।
अच्छा, उनकी क्या समस्या है इससे?
बुसवेल कहते हैं कि रिडबोस की ये समरूपता असल में बादलों में चेहरे देखने जैसी है।
बादलों में चेहरे देखना मतलब जो आकार असल में वहाँ है नहीं, हम जबरदस्ती अपने दिमाग में उसे बना रहे हैं क्योंकि हम एक पैटर्न खोजना चाहते हैं।
बिल्कुल, इसे पैरेडोलिया कहते हैं। बुसवेल का तर्क है कि जो समरूपता हमें आज बहुत साफ दिख रही है, जरूरी नहीं कि प्राचीन लेखक का भी वही इरादा रहा हो।
बात तो सही है।
बहुत ही तार्किक सवाल उठाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दिन 3 पर क्या बना? सूखी जमीन और पेड़ पौधे।
और दिन 6 पर जानवर और इंसान?
बुसवेल पूछते हैं कि पेड़ पौधों का समानांतर केवल जानवरों से कैसे हो सकता है? क्या पक्षी पेड़ों पर घोंसले नहीं बनाते?
हाँ, बिल्कुल बनाते हैं।
क्या मछलियां समुद्री पौधों के बीच नहीं रहती?
ये तो सच है। दिन 3 का संबंध दिन 5 यानी पक्षियों और मछलियों से भी उतना ही है जितना दिन 6 से।
बुसवेल का मुख्य विरोध इस बात से है कि यह ढांचागत परिकल्पना पाठ के ऐतिहासिक अनुक्रम सीक्वेंस को पूरी तरह से मिटा देती है।
मतलब सिर्फ विज्ञान के साथ टकराव से बचने के लिए आप किसी ऐतिहासिक पाठ को महज एक कविता घोषित नहीं कर सकते।
हाँ, उनका मानना है कि इससे पाठ की ऐतिहासिक प्रामाणिकता खतरे में पड़ जाती है।
तो इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि जेनेसिस 1 के एक साधारण से शब्द योम यानी दिन के पीछे कितना बड़ा ब्रह्मांड छिपा है।
बिल्कुल, 24 घंटे के शाब्दिक दिन की व्यावहारिक उलझनों से लेकर
गैप थ्योरी की खोई हुई दुनिया, डे एज थ्योरी के लंबे युग,
ओरिजिन का तार्किक क्रम, ऑगस्टीन का रूपक
और अंत में रिडबोस का साहित्यिक फोटो एल्बम।
और इस विश्लेषण से हमें आज के इस सूचना युग के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिलता है।
वो क्या?
हम अक्सर सोचते हैं कि किसी भी जानकारी का, खासकर प्राचीन ग्रंथों का, केवल एक ही सीधा और सतही अर्थ होता है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है।
बिल्कुल नहीं। किसी भी गहरी जानकारी के पीछे ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, शाब्दिक और साहित्यिक व्याख्याओं के पड़ते होती हैं।
आलोचनात्मक सोच और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है,
ताकि हम केवल किसी एक व्याख्या पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, बल्कि ये समझें कि वे व्याख्याएं किन मजबूरियों या विचारधाराओं से पैदा हुई हैं।
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।
क्या सवाल? क्या ये संभव है कि प्राचीन भाषाओं और शब्दों को उस तरह के वैज्ञानिक और गणितीय सटीकता से मापने के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था, जैसा आज हम आधुनिक युग में करने की कोशिश करते हैं?
ओह, ये बहुत गहरी बात है।
शायद जब हम प्राचीन शब्दों पर आधुनिक विज्ञान का चश्मा लगाते हैं, तो हम उस असली सत्य और सुंदरता को खो देते हैं जो वे मूल रूप से हमें बताना चाहते थे।
ये सच में सोचने वाली बात है। शायद प्राचीन काल के लोगों के लिए समय का मतलब घड़ी की टिक टिक से ज्यादा उस समय के भीतर होने वाले उद्देश्य से था।
हाँ, बिल्कुल।
और शायद जब हम प्राचीन ज्ञान को अपनी आधुनिक कसौटियों पर कसने की जिद छोड़ देंगे, तभी हम उन ग्रंथों को सही मायने में समझ पाएंगे।
आज के लिए बस इतना ही। इस विचार पर खुद भी जरूर मंथन कीजिएगा।